ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनिन्दवरनेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परूवणम् ओच्छम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी लिखित सम्यक ज्ञान चंद्रिका जीव कांड का यहाँ प्रकरण चल रहा है।
मुझे लगता है ये दो पहले हम पढ़ लेंगे, जब अगला जाएगा तो ये पढ़ेंगे।
अच्छा, अभी हम सूचनिका पढ़ रहे थे। आपका ऐसा सजेशन है, कहना है कि जो जो अधिकार आएगा उसकी उसकी सूचनी का हम तभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो पूरा ही 22 अधिकार पढ़ेंगे और वो सारा ऐसा ही चला जाएगा, है ना? ठीक है,
अरविंद भाई
क्या कहते हैं? अरविंद भाई, हाँ तो हम यहाँ 47 पृष्ठ निकालना।
47
ये लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं हम आज। पृष्ठ संख्या है 47। पढ़ते गोमरसार जीव कांड मिला सबको। सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका का हिंदी अनुवाद। भाषा टीका टोडरमल जी ने की है, ढूंढारी भाषा में लिखा था, उसका यहाँ हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। अब इस शास्त्र के मूल सूत्रों की संस्कृत टीका के अनुसार मूल सूत्र के कर्ता कौन है? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। और उसकी जो संस्कृत टीका है केशववर्णी लिखित, उसके अनुसार भाषा टीका करते हैं। वहां प्रथम ही संस्कृत टीकाकार द्वारा कथित ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा, मूल शास्त्र होने के समाचार और मंगल करने की पुष्टता इत्यादि का कथन करते हैं। बंदो नेमी चंद्र जी नराय सिद्ध ज्ञान भूषण सुखदाय करी हो गोमट सार सुटी करी कर्णाट टीक ठीक। इस तरह संस्कृत टीकाकार ने मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा की है, यानी उसका यहाँ उन्होंने हिंदी में अनुवाद दे दिया है कि नेमिचंद्र जी ने भगवान को नमस्कार करके सिद्ध ज्ञान भूषण सुखदाय, ज्ञान भूषण और सुख देने वाले ऐसे जो नेमिचंद्र भगवान है उनको नमस्कार करके मैं गोमट सार नाम की टीका करता हूँ। कर्नाटक टीकत ही ठीक, कर्नाटक यानी कन्नड़ भाषा में जो टीका थी उस पर से ये संस्कृत टीका लिख रहा हूँ। इसे संस्कृत टीकाकार लिखते हैं। इस तरह संस्कृत टीकाकार ने मंगल पूर्वक प्रतिज्ञा की है। पुनश्च कहते हैं, श्रीमान और किसी से नष्ट नहीं होता प्रभाव जिसका, ऐसा जो स्यादवाद मत। अभी यहाँ दृष्टांत यानी जिसको उपमा देकर बहुत बड़ा वाक्य आने वाला है, एक एक हम देखते हैं। श्रीमान, श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी से युक्त श्रीमान, जैसे केवल ज्ञान को भी श्री कहा है और केवल ज्ञान लक्ष्मी से युक्त उसको भी श्रीमान कहते हैं, और जिसका प्रभाव नष्ट नहीं होता ऐसा क्या है, स्यादवाद मत यानी जिनेन्द्र भगवान का मत। अनेकांत का स्वरूप बताने वाली जो स्यादवाद है उस मत में वही तो, हुई गुम्फा। हाँ,
यहाँ तो जो स्यादवाद मत है वह श्रीमान है और वह किसी से नष्ट नहीं हो सकता है, जिसका प्रभाव यानी स्यादवाद का प्रभाव ऐसा अलौकिक है वो किसी से डिफीट नहीं होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता है, इसलिए उसको दो विशेषण दिए, एक श्रीमान और जिसका प्रभाव किसी से नष्ट नहीं होता है। ऐसा जो स्यादवाद मत यानी जिनेन्द्र भगवान की बात वही हुई है गुम्फा। आगे
हाँ। अब उस गुम्फा में रहने वाले कौन है उसको बता रहे, उसके अभ्यंतर वास करने वाले जो कुवादी रूप हाथियों को सिंह समान, सिंहनंदी नामक मुनिंद्र यानी स्यादवाद रूपी गुम्फा, उसमें रहने वाले मुनिंद्र उनका नाम क्या है, सिंहनंदी, तो वे सिंह के समान है। तो सिंह क्या करता है, तो हाथियों को पराजित करता है, हराता है। ऐसे कुवादी रूप जो हाथी है, अन्य मति रूप जो हाथी है, उनको स्यादवाद मत के द्वारा उनका निराकरण करते हैं, उनको पराजित करते हैं। ऐसे जो सिंहनंदी नाम के मुनिंद्र, उनके द्वारा हुई है ज्ञानादि की वृद्धि जिसके, ये मुनिंद्र के द्वारा उनके शिष्यों के ज्ञानादि में वृद्धि हुई है। तभी उनका कौन शिष्य है उसकी बात अभी करेंगे। ऐसा जो गंग नामक वंश में, ये गंग वंश के राजा की बात पहले उठा रहे हैं, गंग नामक वंश में तिलक समान और राज कार्य का संपूर्ण जानना आदि से लेकर अनेक गुण संयुक्त श्रीमान राजमल्ल नामक महाराजा देव, ये राजमल्ल नाम का राजा, उसका वंश है गंग। अपने वो जो बाहुबली मूर्ति है ना, यहाँ जिसका फोटो है यहाँ सामने दिख रहा है श्रवण बिलगुल का, उसमें लिखा है गंगाए वंशाए गंगाए सुत्ताए करवियले, ये गंग वंश वाला जो है उसको गंगाए सुत्ताए करवियले
चामुंड राय करवियले
और चामुंड राय करवियले। अब यहाँ गंग वंश का जो राजमल्ल नाम का राजा है, पृथ्वी का प्यारा है ना, लोगों में वो बहुत मशहूर था, प्यारा था, उसका महान जो मंत्री पद उस गंग राजा का या गंग वंशीय राजमल्ल राजा का जो मंत्री उसमें शोभायमान और रण की रंगभूमि में शूरवीर और पर की सहायता नहीं चाहने वाला, यानी जो मंत्री था वो अत्यंत शूरवीर था, ऐसा पराक्रम का धारी और गुण रूपी रत्नों के आभूषण जिसके हैं, यानी गुणी है, गुण रूपी रत्नों के आभूषण है वो गुणी है, जब हम गिने ये मेरा बेटा बहुत गुणी है, गुण संयुक्त है, और सम्यत्व रत्न का स्थानकपना आदि से लेकर यानी सम्यक दृष्टि, नाना प्रकार के गुणों द्वारा अंगीकार की हुई जो कीर्ति, अनेक गुण के धारक होने के कारण उसकी कीर्ति सर्वत्र फैली हुई है, उसका भर्तार, भर्तार है ना उसका पति, किसका, कीर्ति का पति है ना वो, कीर्ति का धारक, ऐसा जो श्रीमान चामुंडराय राजा, ये चामुंडराय राजा के लिए इतने सारे विशेषण बताए, सिंहनंदी मुनि के जो शिष्य गंगवंशीय राजमल्ल राजा का मंत्री, ये स्वयं डायरेक्ट उनके शिष्य है चामुंडराय। अभी क्या किया चामुंडराय ने, उसके प्रश्न द्वारा जिसका अवतार हुआ, चामुंडराय ने मुनि को प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा, ऐसा 41 पदों में नाम कर्म के सत्व का निरूपण, ये जो जीव स्थान या जो है उसमें 41 पद होते हैं, अभी जो नारकी है, देव है, मनुष्य वगैरह वगैरह, वो बात बाद में देखेंगे हम। तो उन्होंने कुछ उसके बारे में उनको प्रश्न पूछा, नाम कर्म के बारे में। नाम कर्म के उदय के अनुसार जीवों के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, उसको यहाँ 41 पद कहा। तो उसका प्रश्न पूछने पर उससे आरंभ करके समस्त शिष्य जनों के समूह को संबोधन के हेतु श्रीमान नेमीचंद्र नामक सिद्धांत चक्रवर्ती, यानी चामुंडराय ने सिद्धांत चक्रवर्ती को प्रश्न पूछा। वो सिंहनंदी मुनीन्द्र के शिष्य तो गंगवंशी राजमल्ल राजा थे, और ये जो चामुंडराय ने सिद्धांत चक्रवर्ती को प्रश्न पूछा, ये कैसे थे? समस्त सिद्धांत के पाठी, लोगों में विख्यात है निर्मल यश जिसका, यानी उनका निर्मल यश लोगों में फैला हुआ था, और विस्तीर्ण बुद्धि के धारक, अत्यंत बुद्धिमान, ऐसे भगवान शास्त्र के करता है। यह मुनि को ही भगवान कहा है, भगवान को या श्रीमान को ही की बात है ना, भग का भी अर्थ लक्ष्मी होता है। तो पहले में पहले इस शास्त्र के कर्ता कौन है वो बताया नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। उन्होंने ये शास्त्र क्यों लिखा, तो चामुंडराय ने जो प्रश्न पूछा, तो खाली प्रश्न के उत्तर देने के बजाय उन्होंने पूरे गमटसार की ग्रंथ की रचना कर दी। क्योंकि केवल उसका प्रश्नों का उत्तर देते तो उससे तो कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं था। सो महाकर्म प्रकृति प्रावृत नामक मुख्य प्रथम सिद्धांत, देखो ये जो भगवान की वाणी जो है मूल गणधरों ने रची हुई, गुरुओं की परंपरा से चलती आई है, कालांतर में उनमें से कितने ही अंगों का पूर्वों का ज्ञान नहीं रहा, फिर भी जितना रहा तो उसमें जो ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत ये जो प्रथम सिद्धांत ग्रंथ है, उसके जीवस्थान क्षुद्र बंद, इसको खुद्दा बंद भी कहते हैं, खुद्दा बंद प्राकृत में बंद स्वामी, वेदना खंड, वर्गना खंड और महाबंध, ये छह खंड है। तो छह खंड को जीतने वाले, इसलिए उसको कहते हैं चक्रवर्ती, सिद्धांत के चक्रवर्ती। उनमें जीवादि जो प्रमाण करने योग्य समस्त वस्तु, उनके उद्धार से गोमटसार द्वितीय नाम पंच संग्रह नामक ग्रंथ के, ये जो गोमटसार ग्रंथ की रचना हुई है इसी का दूसरा नाम है पंच संग्रह ग्रंथ के विस्तार को रचते हुए उस ग्रंथ के आदि में ही निर्विघ्न रीति से शास्त्र की संपूर्णता होने के लिए शुरू में मंगलाचरण क्यों करते हैं, तो शास्त्र की निर्विघ्न बिना विघ्न के, कोई बीच में बाधा न आए, ऑब्स्टेकल न आवे, इसलिए मंगलाचरण के रूप में पंच परमेष्ठियों को स्मरण किया जाता है। तो निर्विघ्न रीति से शास्त्र की संपूर्णता होने के लिए तथा नास्तिकवादियों के परिहार के लिए, जो नास्तिक जन है मानते ही नहीं है, कोई भगवान को नहीं मानते, कोई उनके कथन में जो बातें आई उसको नहीं मानते, तो उनका खंडन करने के लिए, खंडन ने उनका जो मत है वो कैसा खोटा है, झूठा है, वो बताने के लिए, तथा शिष्टाचार पालने के लिए। शिष्टाचार क्या होता है? क्योंकि जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है तो ऐसी विधि होती कि पहले मंगलाचरण किया जाता है, तथा उपकार का स्मरण करने के लिए, क्योंकि ये जो हमें वाणी है, जो हमें सुनने को मिला है, ये जो ज्ञान हो रहा है, वो तीर्थंकर भगवान की वाणी में से ये सारी बातें आई है, तो उनका उपकार स्मरण करने के लिए, और गुरुओं के आचार्यों की परंपरा से हमें ये प्राप्त हुआ है तो उनका भी स्मरण करने के लिए, विशिष्ट जो अपने इष्ट देव का विशेष उसे नमस्कार करते हैं, अपने जो इष्ट देव है अरिहंत सिद्ध आचार्य आदि जो है, या किसी को नाम लेकर भी कहेंगे, हम नाम भी लेंगे महावीर भगवान का, या कोई नेमीचंद भगवान का भी नाम ले लेंगे नेमिनाथ का, तो भी यहाँ उनको याद करने का ही प्रयोजन है, इसलिए उसे नमस्कार करते हैं भावार्थ। अब ये तो मूल संस्कृत टीका में इतना सारा लिखा था, अब भावार्थ में पंडित टोडरमल जी बता रहे हैं। यहाँ ऐसा जानना, सिंहनंदी नामक मुनि के शिष्य जो गंगवंशी राजमल्ल नामक महाराजा, उसका मंत्री चामुंडराय राजा, उसने नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती से ऐसा प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया वो अभी यहाँ बता रहे हैं। जो सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी कायादिक, सूक्ष्म अपर्याप्त पृथ्वी काय, सूक्ष्म अपर्याप्त फिर वो अग्निकाय, जलकाय वगैरह 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 सब ऐसे जीव, अलग अलग जो भेद है उसके आदि, जो 41 जीव पदों में ऐसे 41 अलग अलग भेद है, उनमें से नाम कर्म के सत्व का निरूपण कैसे है सो कहिए। उसमें नाम कर्म की सत्ता कैसी कैसी उन जीव पदों में, ये आप मुझे बताइए। ऐसा प्रश्न पूछने वाला बहुत ही तत्व का अभ्यासी गाढ़ा होना चाहिए, है ना।
41 यानी 41 आठ कर्म है, उसमें से एक नाम कर्म है, तो उसका सत्व यानी सत्ता में जो कुछ है उसकी बात चल,
यानी ये कर्णानियोग संबंधी बहुत डिटेल में कर्म संबंधी बात उन्होंने पूछी। वहां इस प्रश्न का निमित्त पाकर अनेक जीवों के संबोधनार्थ, अनेक जीवों को संबोधन करने समझाने के लिए, क्योंकि एक बात ये बात समझेंगे तो बहुत सारे जीवों का कल्याण होगा। केवल एक प्रश्न का उत्तर देने से कुछ वो चामुंडराय जी तो समझ जाएंगे, परंतु बाकी जीवों को शुरू से विस्तार से सारी बातें समझाना उन्होंने ठीक समझा। उसके लिए जीव स्थानादि 6 अधिकार जिसमें हैं, ऐसा महाकर्म प्रकृति प्रावृत है नाम जिसका, ये उल्टा उल्टा हम बाद में समझेंगे, पूरा वाक्य पहले पढ़ लेते। ऐसा अग्रायणीय पूर्व का 5वां वस्तु अथवा भूतबली आचार्य कृत षटखंडागम, उसके अनुसार गोमटसार और इसी का दूसरा नाम पंच संग्रह ग्रंथ, उसके करने का प्रारंभ किया। ये ग्रंथ का ओरिजिन कहाँ से आया है उसकी बात यहाँ बताते हैं। इस ग्रंथ का नाम है गोमटसार, इसी का दूसरा नाम है पंच संग्रह। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो भूतबली आचार्य ने षटखंडागम लिखा है। अभी हमने वो नाम देखे ना, षटखंड के नाम अभी हमने पढ़े थे। तो ये षटखंडागम किसने रचा, भूतबली आचार्य ने, भूतबली और दूसरे पुष्पदंत, उनको किसने सिखाया था, तो पहला ये लिखित रूप से उन्होंने लिखा। तो उनके गुरु थे धरसेन आचार्य। धरसेन आचार्य के मन में ऐसा भाव आया कि अगर अभी ये दिन ब दिन तो लोगों की इसमें रुचि भी कम हो रही है, इसका ज्ञान भी अल्प हो रहा है, और कुछ काल के बाद इसका भी नाश होने वाला है, तो इसको क्यों ना लिखित रूप से लिखे, लिख कर रखे। तो उन्होंने जो मुनि संघ था वहां मैसेज भेजा कि जो लायक ऐसे काबिल शिष्य को यहाँ भेज देना। तो ये दो आ गए, भूतबली और पुष्पदंत। तो फिर वो तो लंबी स्टोरी, उनकी तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कोई मंत्र उनको दिया, इस मंत्र की साधना करो। तो मंत्र की साधना की तो एक कानी देवी और एक ऐसे दांत वाली ऐसे कुछ प्रकट हुई, कुरूप देवी प्रकट हुई। तो मंत्र अगर ठीक होता तो देवी सर्वांग सुंदर ऐसे प्रकट होती। तो उन्होंने समझ लिया कि इसमें कुछ तो होना चाहिए, खोट है, कोई दोष है। तो उसको बराबर उन्होंने पढ़ा और उसको सुधार कर फिर उसकी साधना की, तो वो देवियां प्रकट हुई। तो फिर जाके उन्होंने गुरु को, गुरु के पास नमस्कार करके निवेदन किया। तो गुरु ने भी वो उनकी परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर ऐसे गलत मंत्र उनको दिया था। तो उनकी काबिलियत समझकर फिर उन्होंने उनको पूरा ही समझाया, पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने ये षटखंडागम की रचना करके वो लिखित रूप से रख, नहीं ऐसा उस मंत्र को ऐसा लिखने में है नहीं है।
वो मंत्र अगर हमें पता लगे तो तुम भी एकाध देवी खड़ा करोगे, इसलिए नहीं रखा है। नहीं वो उपलब्ध हम नहीं है, ये तो हो सकता है आख्याय का भी हो गए, कथा भी हो गए, ऐसा बस जो चल रहे हैं वो जो ज्ञात है वो बताते हैं।
हमने जो 12 अंग देखे ना, 12वें अंग में जो 14 पूर्व होते हैं, तो उसमें एक अग्रायणी पूर्व नाम का पूर्व है। ये पूर्व क्या होते हैं, उसके एक वस्तु क्या होती है, वो बात हम आगे ज्ञान मार्गणा में पढ़ने वाले हैं। उसके जो अधिकार है अलग अलग, उसके वो नाम है। तो अग्रायणी जो पूर्व है उसमें से पांचवी वस्तु, पांचवा वस्तु, वस्तु भी उसके अधिकार का नाम है, और उसमें से ये महाकर्म प्रकृति प्रावृत निकला है। इसका ओरिजिन कहाँ से है ये बात यहाँ बताई। मूल जो द्वादशांग की रचना की थी उसमें से ये बात आई है। वहां प्रथम अपने इष्ट देव को नमस्कार करते हैं, उसके निर्विघ्नपने से, उसके निर्विघ्नपने से शास्त्र की समाप्ति होना आदि चार प्रयोजन कहे। अब इनको दृढ़ करते हैं, यानी नमस्कार क्यों करना, तो चार उसके कारण बताए कि शास्त्र निर्विघ्न समाप्त हो जाए आदि। हमने ऊपर देखे थे पहले दूसरी लाइन में, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति हो इसलिए नास्तिकवादियों का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार पालने के लिए और उपकार का स्मरण करने के लिए, ये बातें हम ऊपर देख चुके हैं। अब उसी की बात यहाँ फिर दोबारा बताते हैं। यहाँ तर्क, शंकाकार शंका करता है, जो इष्ट देव उनको नमस्कार करने से निर्विघ्नपने से शास्त्र की समाप्ति कैसे होती है। भगवान को नमस्कार करके ग्रंथ लिखना शुरू किया तो उसके कारण निर्विघ्न समाप्ति कैसे हो सकती है। वहां कहते हैं ऐसी आशंका नहीं करनी, क्योंकि शास्त्र का ऐसा वचन है, शास्त्र में ही ये बात लिखी है, विघ्नौघा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तुयमाने जिनेश्वरे। इसका अर्थ लिखा है नीचे, स्तुयमाने जिनेश्वरे ने जिनेश्वर देव का स्तवन करते हुए, स्तवन ने उनकी स्तुति करते हुए, विघ्न के जो समूह वे नाश को प्राप्त होते हैं। विघ्नौघा, विघ्नों के समूह प्रलयम यान्ति अने नाश को प्राप्त होते हैं। पुनश्च शाकिनी भूत सर्पादिक, शाकिनी यानी ऐसे वो तो जैसे कहते ना वो तो भूतों का कोई प्रकार है, हाँ विच विच, हाँ
WITCH
विचेस, भूतनी हडल जिसको कहेंगे मराठी में, सर्पादिक वे नाश को प्राप्त होते हैं। शाकिनी भूत पन्नगा, पन्नगे ने सर्प, पुनश्च विष जो है वह विष रहित पने को प्राप्त होता है। विषम निर्विषताम यान्ति, सो ऐसे वचन के बारे में शंका नहीं करनी, यानी भगवान के नाम स्मरण से उनके स्तवन करने से ये बातें होती है तो इस पर आप डाउट नहीं करना, इसे कहते शंका नहीं करनी। पुनश्च जैसे प्रायश्चित के आचरण से व्रतादिक का दोष नष्ट होता है, देखो कोई व्रत करते हैं और उसमें अतिचार लगता है, कोई दोष लगता है, तो उसके लिए प्रायश्चित किया जाता है और उसके कारण वो दोष भी नष्ट हो जाता है। तथा जैसे दूसरा और एक दृष्टांत दे रहे हैं, औषध सेवन से रोग नष्ट होता है, वैसे मंगल करने से विघ्नकर्ता अंतराय कर्म के नाश का अविरोध है, नाश का अविरोध है ने नाश होता है, इसलिए शंका नहीं करनी। इस तरह प्रथम प्रयोजन दृढ़ किया। पहला प्रयोजन क्या था, शास्त्र की निर्विघ्न समाप्ति। पुनश्च तर्क, अभी शंकाकार ये तर्क दे रहा है और उसके लिए वो स्वयं एक श्लोक प्रस्तुत कर रहा है। ऐसा न्याय है कि सर्वथा स्वहितम आचरणीयम किम करिष्यति जनो बहुजल्पः विद्यते नहि स कश्चिद् उपाय सर्वलोक परितोष करो यः। इसका अर्थ सर्व प्रकार से अपने हित का आचरण करना, अपना हित करते हुए। बहुत बकता है जो मनुष्य लोग, वह क्या करेगा? और यदि कोई कहेगा कि सब प्रसन्न हो वह कार्य करना, तो जगत में वह कोई उपाय ही नहीं जो सभी लोगों को संतुष्ट करे। ये शंकाकार ये न्याय की नीति के श्लोक बता रहा है। इस न्याय से जिसका प्रारंभ कर रहे हो उसका प्रारंभ करो। नास्तिकवादी का परिहार करने से क्या साध्य है? आप लोग उनका परिहार क्यों करना? आप जो करना है तो करो ना, उसको मत का खंडन क्यों करते हो? वहां कहते हैं ऐसा भी नहीं कहना, क्योंकि प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य गुणों का प्रकट होने रूप लक्षण का धारक सम्यक दर्शन है। ये हमने पहले सम्यक तो के वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी ये गुण देखे थे उसके। हाँ, कि प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य आदि। इसलिए नास्तिकवादी के परिहार द्वारा आप तो जो सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भगवान जो है अरिहंत, उनको आप तो कहते हैं, उनको आदि रखकर यानी उनको शुरू में, हाँ शुरू में रखकर पदार्थों में जो आस्तिक्य भाव होता है उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने का कारण पना पाया जाता है। क्या कहते हैं? पदार्थों का आस्तिक्य भाव यानी इस विश्व में छह द्रव्य है, सात तत्व है, ये आस्तिक्य भाव है। पंचासिकाएं है, ये स्वर्ग नरक आदि रचना है, सिद्ध होते हैं, अरिहंत है, ये सब ये बातें जो है अस्थिपना। क्योंकि लोकेशन किसने देखा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लोगों को डराने के लिए लिखा है, तो उसको नास्तिक कहलाएगा। देखो जैनों पर आरोप करते ये नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, भगवान को करने वाला नहीं मानते। अन्यमति क्या मानते हैं? ईश्वर सबका करता है। और जैनी ईश्वर क्या, कोई भी एक द्रव्य दूसरे का करता है, परंतु उनका आरोप है कि ये लोग ईश्वर को ही नहीं मानते। ऐसी बात नहीं है, ईश्वर को सही रूप से मानते हैं। तथा ऐसा प्रसिद्ध वचन है, यद्यपि विमलो योगी छिद्रान पश्यति मेदनी तथापि लौकिकाचारम मनसापि न लंघयेत। इसका अर्थ, यद्यपि योगीश्वर निर्मल है, योगीश्वर ने मुनिराज निर्मल है, तथापि पृथ्वी उसके भी छिद्रों को देखती है। पृथ्वी ने लोक सभी जन आम जनता उसके भी छिद्रों को देखती है ने, वो भी कहाँ चूकता है, उसका दोष क्या है, नहीं हो तो भी उसको लगाएंगे, तो उसको देखती है। इसलिए लौकिक आचार को मन से भी उल्लंघन न करे, यह बात प्रसिद्ध है। लौकिक आचार्य ने जो रूढ़ी है कि ग्रंथ के शुरू में हमें ये मंगलाचरण करना है, तो ये लौकिक आचार का उल्लंघन मत करना। इसलिए ये दूसरे पॉइंट पर बात चल रही थी नास्तिक के परिहार के लिए, नास्तिक का परिहार करना चाहिए। इस तरह दूसरा प्रयोजन दृढ़ किया। पुनश्च तर्क, अभी तीसरा जो प्रयोजन है उसके लिए तर्क लगाते हैं। शिष्टाचार का पालना किसे अर्थकारी है? शिष्टाचार पालन करने से किसका भला होगा, यानी उसका क्या प्रयोजन है? वहां कहते हैं ऐसा विचार योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा वचन मुख्य है कि प्रायेण गुरुजन शीलम अनुचरन्ति शिष्याः। इसका अर्थ, जो शिष्य है वे प्राय ने मुख्यता बहुतांशी यानी जनरली
मेजोरिटीली
गुरुजनों का जो स्वभाव उसका अनुसरण करके आचरण करते हैं। पुनश्च ऐसा न्याय है, मंगलम निमित्तम हेतु परिमाणम नाम कर्तारम इति षडपि व्याकृत्याचार्याः पश्चात शास्त्रम व्याकुर्वन्तु। यानी ये छह बातें हैं, उसको बताकर फिर शास्त्र की रचना होती है। कौन सी छह बातें हैं? अभी हम हिंदी में पढ़ेंगे इसको। मंगल यानी जो मंगलाचरण करते हैं, प्रत्येक ग्रंथ के शुरू में हम अरिहंतादि को नमस्कार करके ग्रंथ की शुरुआत करते, उसको कहेंगे मंगल। दूसरी बात निमित्त, किस निमित्त ये शास्त्र लिखा उसको निमित्त कहेंगे, जैसे शिष्यों को संबोधन के लिए उसको हम निमित्त कहेंगे। तीसरा हेतु, उसका कारण क्या है शास्त्र लिखने का, प्रयोजन क्या है। चौथा परिमाण, यानी वो ग्रंथ कितने श्लोक प्रमाण है वो पहले बताएंगे ग्रंथ के शुरू में, फिर ग्रंथ का नाम कहेंगे और ग्रंथ लिखने वाले का नाम कहेंगे, कर्ता। इन छह को पहले बताकर पश्चात आचार्य शास्त्र को करे ऐसा न्याय, यानी ऐसे रूटीन ऐसी पद्धति आचार्यों की परंपरा से चला आया है, इसी पद्धति से ग्रंथ की रचना होती है, ये परंपरा से ये बात चली आई है, तो उसको कहेंगे शिष्टाचार। उसका उल्लंघन करने से उन मार्ग में प्रवर्तने का प्रसंग आएगा। उन मार्ग यानी कोई अपना स्वच्छंद नया मार्ग, खोटा मार्ग चलाया,
विरुद्ध मार्ग जिसको हम
कहेंगे। इसलिए शिष्टाचार का पालना किसे अर्थकारी है इस तरह विचार करना योग्य नहीं है, प्रश्नकार ने प्रश्न पूछा था। तो यहाँ चारों ही प्रयोजनों की बात हो गई, उपकार के स्मरण की भी बात हो ही गई ना, उसमें आ गई। अब यहाँ
यहाँ जो छह पॉइंट्स हमने देखे थे,
चार देखे, चार
नहीं,
वो छह पॉइंट्स तो अभी आने वाले
हैं। वही मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, नाम, कर्ता, इनको अभी यहाँ एक्सप्लेन करने
वो
वाले,
वो तो अभी आएंगे। हाँ।
अभी यहाँ जो बोल्ड टाइप में जो लिखा है इटैलिक लेटर्स में, तो वो मूल शास्त्र में वो नहीं थे, लेकिन उज्ज्वला ने उसको हेडिंग देते हुए, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं ये समझने के लिए, यहाँ कहीं जगह पे अधिक पैराग्राफ भी छोटे छोटे बनाए ताकि पढ़ने में कंटाला नहीं आवे, नहीं तो वहाँ तो यहाँ से चालू हो अगले लाइन में तो कोई पैराग्राफ नहीं है। आपके पास जीव कांड होगा घर में तो आप टैली कर सकते हैं। तो ये जो जो यहाँ 51 पेज पे कोई तर्क करता लिखा है वो वैसा का वैसा लिखा है, वो मूल शास्त्र में है, लेकिन निमित्त लिखा है, हेतु लिखा है वहाँ वैसे 51 पेज पर
ऐसा कोई हेडिंग नहीं था मूल ढूंढारी भाषा में। ये छह जो बातें है ना, वो छह बताने के लिए वो इटैलिक में ऐसे तिरछा लिखा है मंगल, आगे के पेज में निमित्त हेतु वगैरह लिखा है, ये बाद में डाले हैं। और ये भी यहाँ आगे जाके नाम मंगल, स्थापना मंगल, ये बोल्ड में जो लिखा है वो भी समझने के लिए यहाँ लिखा है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ। अब यहाँ मंगलादिक छह क्या है वह कहते हैं, हमने देखा ना मंगल, निमित्त, हेतु वगैरह, वो छह की बात अभी यहाँ बताएंगे। मंगल, वहाँ प्रथम ही पुण्य, पूत, ये सारे जो है ना पुण्य के ही अर्थ में ये शब्द अलग अलग आते हैं, इसको कहते हैं एकार्थवाची शब्द, सेम मीनिंग वाले अलग अलग शब्द,
पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची कहो एकार्थवाची कहो। पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ, सौख्य इत्यादि मंगल के पर्यायवाची है। मंगल कहो या इनमें से कोई एक शब्द को एक ही बात है, मंगल ही के पुण्यादिक भी नाम है, ये अभी हमने जो नाम पढ़े वो मंगल के ही नाम है। अब मंगल का भी अर्थ देखेंगे हम। वहां मल दो प्रकार के हैं, द्रव्य मल और भाव मल। द्रव्यमल यानी बाहर की जो गंदगी है उसको द्रव्यमल कहेंगे, और भावों में जो मलिनता है कषाय उसको भावमल कहेंगे। वहां द्रव्यमल दो प्रकार का है, बहिरंग और अंतरंग। द्रव्यमल में भी दो लिए, वहां पसीना, मल, धूली, कादव, कादव यानी कीचड़ इत्यादि बहिरंग द्रव्यमल है, तथा प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेशों के द्वारा आत्मा के प्रदेशों में निबिड़ बंधा हुआ, निबिड़ यानी
थिकली
हाँ, डेंस हाँ, यानी घना जिसको कहते हैं, निबिड़ बंधा हुआ जो ज्ञानावरण आदि आठ प्रकार कर्म वो अंतरंग द्रव्यमल है, इसको भी द्रव्यमल कहा क्योंकि ये पुद्गल का है। द्रव्यमल दो प्रकार का, बहिरंग जो शरीर की जो अशुचि है, पसीना मलमूत्र आदि जो कोई बातें हैं, वो सारा ही बहिरंग में, उसमें और भी मल है, कादव है वगैरह सब लेना। और अंतरंग द्रव्यमल में ज्ञानावरणादि आठ कर्म लिए। पुनश्च भावमल अज्ञान अदर्शनादि परिणाम रूप है, मिथ्यात्व अज्ञान आदि जो है वो है भावमल।
अदर्शनादि का अर्थ है अदर्शन, जो जिसको दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है,
मिथ्यात्व कहेंगे उसको।
जैसा हमने राग और अराग, राग का विरुद्ध अराग है, वैसे यहाँ दर्शन का विरुद्ध अदर्शन है।
अथवा नाम स्थापना द्रव्य भाव भेद रूप मल है, भाव मल भी, या मल को दो भेद पहले किया, द्रव्य और भाव, द्रव्य मल और भाव मल। दूसरी पद्धति से उसके करना है तो नाम स्थापना द्रव्य और भाव के भेद रूप से मल है। अथवा उपचार मल जीव के पाप कर्म है, उन सभी मलों को गालयति अर्थात विनाश करता है, ये मल को गालता है, मल का विनाश करता है। पहले मल का ना ये क्यों शुरू किया, मंगल शब्द का अर्थ देखना था, तो मल को गालने वाला वो मंगल, मम गालयति ऐसे संस्कृत में कहते हैं, हम हिंदी में कहेंगे मल को जो गालता है, नष्ट करता है, वो मंगल है। सभी मलों को गालयति, ये गालयति ये संस्कृत वर्ब है, संस्कृत में ऐसी पद्धति होती है, अर्थात विनाश करता है, घात करता है, दहता है, दहना है ने उसको जलाना, हनता है, हनना है ने वो नाश करना, शोधता है वा विध्वंस करता है, वह मंगल कहलाता है। अथवा अभी दूसरे पद्धति से मंगल को बता रहे, मंगम लाती, पहले क्या कहता, मम गालयती, पाप का या मल का नाश करे वो मंगल। दूसरा अर्थ मंगम लाती, मंग यानी सुख, मंगम अर्थात सौख्य व पुण्य, उसको लाती अर्थात आदान करता है, ग्रहण करता है, वह मंगल है। यानी मंगल करने से पाप का नाश होता है और पुण्य की या सुख की प्राप्ति होती है। पुनश्च वह मंगल नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से आनंद का उपजाने वाला छह प्रकार का है। यानी हम ऐसा कहेंगे नाम मंगल, स्थापना मंगल, द्रव्य मंगल, भाव मंगल, काल मंगल, क्षेत्र मंगल वगैरह। अभी उसका अर्थ एक एक करके देखेंगे। वहां अर्हत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इनका जो नाम, वह तो नाम मंगल है, उनका नाम लेना वो नाम मंगल है। पुनश्च जिनादिकों के, जिनादिक यानी जिनेन्द्र भगवान आदि के कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंब, ये कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंब का अर्थ समझते हो सुशीला बेन? हाँ, कृत्रिम का अर्थ क्या है, बनाया हुआ, क्या बनाया हुआ, जिन बिंब, जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा या जो मंदिर चैत्यालय जो हम बनाते हैं वो कैसा है, कृत्रिम है, किसी ने उसको बनाया है। और अकृत्रिम ऐसे चिन्ह चैत्यालय भी है और जिन बिंब भी है जिसको किसी ने बनाया नहीं है, परंतु ऐसे वो विद्यमान ही है
अनादिकाल से रहेंगे।
अकृत्रिम चैत्यालय जो है वो तीन लोक में है, तो उन अकृत्रिम चैत्यालयों की यहाँ बात उठाई है कि जिनादिकों के कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंब वह स्थापना मंगल है। हमने उस जिन बिंब में ये भगवान महावीर है ऐसी स्थापना कर दी, क्योंकि पहले तो वो पाषाण था, फिर पाषाण को शेप देकर वो मूर्ति बनाई, मूर्ति अभी ऐसी मूर्ति है तो हम उसको वंदना वगैरह कुछ नहीं करते, जब उसमें हम पंचकल्याणक में क्या करते हैं, उसको स्थापना निक्षेप के द्वारा, वो मंत्रादि विधि के द्वारा हम ऐसे वो निश्चित करते, ये अभी हमारे महावीर भगवान है, तो उसके ऊपर गर्भ, जन्म, तप आदि सारे जो कल्याणक और संस्कार होते हैं। स्थापना मंगल। पुनश्च जिन आचार्य उपाध्याय साधु इनका जो शरीर वह द्रव्य मंगल है। शरीर तो मंगल नहीं, परंतु वहां ये अरियंतादि रहते हैं तो वहां उसको भी द्रव्य मंगल कहेंगे। इसमें से किसको छोड़ा पंच परमेष्ठी से? हाँ, अमोल को मैं पूछ रहा हूँ, पूछ रही हूँ, किसको छोड़ा? हाँ, अरिहंत को छोड़ा। क्यों छोड़ा अरिहंत को? तो जिन में किसको लेना? हाँ हाँ बोलो। देखो इनके शरीर, अभी शरीर वाले परमेष्ठी कितने हैं? हाँ, सिद्धों को छोड़ा है इसमें से, है ना? इसलिए जिन आचार्य उपाध्याय साधु इनका जो शरीर वह द्रव्य मंगल है। पुनश्च कैलाश गिरनार सम्मेदाचल, सम्मेद शिखर जी कहते ना, पर्वतादिक अरहंतादिकों के तप केवल ज्ञानादि गुणों के उपजने के स्थान, जहां उनके केवल ज्ञान हुआ था, जहां उन्होंने दीक्षा ली थी वो स्थान, वहां 3.5 हाथ से लेकर 525 धनुष पर्यंत केवली के शरीर द्वारा रोका हुआ आकाश, यानी जहां भगवान विराजमान थे तो जिस प्रदेश आकाश के प्रदेश में थे वो आकाश, अथवा केवली के समुद्घात द्वारा रोका हुआ आकाश, वो पूरा ही लोकाकाश हो जाता है, वह क्षेत्र मंगल है, क्योंकि उसमें भगवान विराजमान है या थे, इसलिए वो क्षेत्र मंगल है। पुनश्च जिस काल में तपादि कल्याणक हुए हैं वह जिस काल में अष्टानिकादि जिनादि के महान उत्सव वर्तते हैं वह काल मंगल है। अष्टानिक नाम सुना होगा आपने, अष्टानिक 8 दिन कब आते हैं? हाँ, कार्तिक फागुन साढ़ आषाढ़ के, कौन से हिंदी वाले कहेंगे अंत 8 दिन, और गुजराती वाले कहेंगे तो शुक्ल, कहां से? अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक। हिंदी वालों को महीना पूर्णिमा को एंड होता है, इसलिए वो अंतिम 8 दिन कहते हैं, उसको अष्टानिक कहते हैं। ये तपादि कल्याणक है, तप कल्याणक है, ज्ञान कल्याणक है, मोक्ष कल्याणक है, ये जो उनके जो काल मंगल कहेंगे उसके। पांचों कल्याणकों को हम मनाते हैं ना, आज है किसी का कल्याणक? हाँ, मुनि सूरत का जन्म और तप कल्याणक है, और कल हुआ था मुख ज्ञान कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक, ये काल मंगल है। पुनश्च मंगल पर्याय से संयुक्त जीव द्रव्य मात्र भाव मंगल है। स्वयं जीव द्रव्य भाव मंगल है, क्योंकि वो मंगल पर्याय से परिणत है। कौन सी मंगल पर्याय? अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि पर्याय से परिणत। सो यह कहा हुआ मंगल जिनादि के स्तवनादि रूप है। सो शास्त्र के प्रारंभ में किया हुआ मंगल शिष्यों को थोड़े काल में शास्त्रों का पारगामी करता है। क्या कहते हैं? पारगामी उसका जानने वाला, एक्सपर्ट बना देता है। शास्त्र के शुरू में मंगल किया तो पढ़ने वाले एक्सपर्ट हो जाते शास्त्र में। अच्छा है ना?
बहुत अच्छा।
मध्य में किया हुआ मंगल, ये शुरू की बात पढ़ी उन्होंने, मध्य में किया हुआ मंगल विद्या का विच्छेद न हो उसे करता है। ग्रंथ के मध्य में भी मंगल करेंगे कहीं कहीं, तो जो पढ़ा है वो रहेगा। पहले तो क्या है, एक्सपर्ट बना देगा, और दूसरे मध्य का मंगल वो जो पढ़ा है उसका विच्छेद नहीं होने देता। अंत में किया हुआ मंगल विद्या के निर्विघ्नपने को करता है, वो विद्या निर्विघ्नपने हासिल हो जाती है। कोई तर्क करता है कि इष्ट अर्थ की प्राप्ति परमेष्ठियों के नमस्कार से कैसे होगी? वहां काव्य कहते हैं, निष्ठम विहंतुम शुभ भाव भग्न रस प्रकर्ष प्रभुरंतराय तत्कामचारेण गुणानुरागा इत्यादि राष्ट्रार्थ कृदर दादे अरहद आदे, यानी अरहद आदि, उसका अर्थ देखेंगे। अरहंतादिक को, अरहंतादिक यानी सभी पंच परमेष्ठी लेना, नमस्कार रूप शुभ भावों से नष्ट हुआ है अनुभाग का आधिक्य, जिसका ऐसा जो अंतराय नामक कर्म, क्या कहते हैं ये अंतराय कर्म, घाती कर्म है क्या अघाती है? हाँ? क्या कहते हैं? घाती कर्मों के नाम याद है कि नहीं है?
वीरेश भाई बोल रहे हैं।
हाँ बोलो वीरेश भाई। घाती कर्म है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मौनी और अंतराय, ये घाती कर्म है। तो पाप रूप है कि पुण्य रूप है? पाप रूप है। अब क्या कहते हैं, अरहंतादि को नमस्कार करने से क्या होता है? अनुभाग का आधिक्य, यानी तीव्र अनुभाग था, ये घाती कर्म है, पाप कर्म है, उसका अनुभाग यानी फल देने की उसमें जो शक्ति थी, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत थी, वो अरिहंत आदि को नमस्कार करने से उसका अनुभाग घट गया, आधिक्य नष्ट हुआ, ने तीव्रता कम हो गई, अधिक अनुभाग वाला था वो अभी कम हो गया। वह इष्ट को घातने के लिए प्रभु अर्थात समर्थ नहीं होता, यानी जो अंतराय कर्म का अनुभाग अभी इतना कम हुआ है तो अभी वो इष्ट का घातना, इष्ट का घातने ने हमें, हमारे इष्ट क्या है, ग्रंथ को पढ़ना है, समाप्त करना है, लिखना है, ये हमारा इष्ट है, तो हमारा जो इष्ट है उसका वो नाश नहीं करता। अन्यत्र अंतराय कर्म के कारण अपनी जो इष्ट यानी हमें जो चाहिए वो बात पूरी नहीं होती। यहाँ क्या हुआ है, अरहंतादि के स्मरण मात्र से अंतराय कर्म का अनुभाग घट गया, इसलिए अभी बाधा नहीं आएगी, ये कहना चाहते हैं। इसलिए उस अभिलाषा युक्त जीव के द्वारा गुणानुराग से अरहंतादि को किया हुआ नमस्कार आदि, बस अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय वो नहीं, गुणानुराग से अरहंतों के गुण जानेंगे और उनके गुण के प्रति हमें अहोभाव आ जाएगा, इसको कहते हैं गुणानुराग से अरहंतादिक को किया हुआ नमस्कार आदिक। वह इष्ट अर्थ का करने वाला है, यानी हमारी जो चाहते हैं हम जो बात, क्योंकि ग्रंथ की समाप्ति वगैरह वो हमारा निर्विघ्न पार हो जाता है, ऐसा परमागम में प्रसिद्ध है। ये ऊपर जो श्लोक पढ़ाया है ग्रंथ में ही लिखा हुआ है, इस कारण वह मंगल अवश्य करने ही योग्य है। हम भी शुरू में नमोकार मंत्र कहकर जो शुरू करते हैं ग्रंथ पढ़ने वगैरह की, या उस ग्रंथ का मंगलाचरण भी हम मंगलाचरण के रूप में लेते हैं, तो उसका भी प्रयोजन यही है। ये छह में से एक मंगल को देखा, दूसरा क्या है, निमित्त। पुनः से इस शास्त्र का निमित्त यह है, जो भव्य जीव है वे बहुत नए प्रमाणों से नाना प्रकार के भेद को लेकर पदार्थों को जाने, इस कार्य को कारणभूत करते हैं, यानी अन्य अन्य नए प्रमाणों के द्वारा वस्तु स्वरूप को समझाते हैं। हेतु, पुनः इस शास्त्र के अध्ययन में हेतु दो प्रकार के हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष। वहां प्रत्यक्ष दो प्रकार है, साक्षात प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्ष। साक्षात यानी भी सामने जो है साक्षात है, और परंपरा यानी कुछ कालांतर के बाद होने वाला वो प्रत्यक्ष। वहां अज्ञान का विनाश होना, देखो ये पढ़ने से क्या लाभ होगा, हमें ये मालूम नहीं था अभी मालूम हो गया, तो हमें ज्ञान का लाभ किसमें गिनते हैं? आपने क्या पढ़ाई की मेडिकल, कितना कमाते हो, तो हमने अध्ययन का लाभ कितना होगा पैसे में गिनते हैं, वो नहीं है। उस संबंधी हम अज्ञान में थे, उस विषय का ज्ञान हुआ, यही सबसे बड़ा लाभ है। अमल समझ में आता है, हम अभी ये जानने वाले सब गुणस्थान वगैरह मार्गणा स्थान, उस संबंधी आप कुछ जानते हो, मार्गणा के बारे में जानते कुछ? कुछ नहीं जानते। अब यहाँ पढ़ने के बाद जानेंगे तो ये लाभ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यही पहले में पहला लाभ यही है कि उस संबंधी अज्ञान का नाश हो गया तथा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होनी। पहला लाभ है अज्ञान का नाश, दूसरा सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होनी तथा देव मनुष्यों द्वारा निरंतर पूजा करना, ये इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करता है, फिर भी सहज रूप से शास्त्र के अध्ययन से ये बातें होती है। देव और मनुष्य उनकी पूजा करते हैं, तथा ये शास्त्र लिखने का भी हेतु लिखा है वो, असंख्यात गुणश्रेणी रूप कर्म की निर्जरा होना। क्या शास्त्र लिखने से कर्म की निर्जरा होती है? चल हम भी लिखेंगे, ये सम्यक दृष्टि है, संयमी है, मुनिराज है, तो उनकी तो गुणश्रेणी निर्जरा तो चलती ही रहती है, परंतु जब ग्रंथ लिखते हैं तो उपयोग की इतनी सूक्ष्मता होती है, और वहां अन्य राग द्वेष के कोई कार्य होते नहीं है, तो वीतरागता सहित किसी एक चीज में एकाग्रता होना, इसको ध्यान कहेंगे। तो ध्यान में ये बहुत बड़ा अच्छा निमित्त है, तो इसलिए असंख्यात गुणी निर्जरा होती। अमृतचंद्राचार्य ने भी लिखा है ना, मम परम विशुद्धिर भवतु, मेरी विशुद्धि बढ़ जाए। तो आप कहेंगे कि शुभ राग बढ़ जाए, शुभ राग बढ़ने की बात नहीं, शुभ राग तो होते ही उस काल में, परंतु शुभ राग के लिए नहीं, वो अभिप्राय में शुभ रागों को भला नहीं कहते, परंतु इसमें उपयोग की सूक्ष्मता होती है, मन की एकाग्रता होती है, तो इसलिए असंख्यात गुणी निर्जरा भी होती है। ये तो साक्षात प्रत्यक्ष हेतु है, यानी उसी समय होने वाले ये बातें हैं, उतना लाभ तो तात्काल ही होता है। शास्त्राध्ययन करते ही ये फल निपजते हैं, क्योंकि हमें उधारी का धंधा नहीं चाहिए, रोकड़ा चाहिए। तो रोकड़ी क्या क्या बातें होती है, अज्ञान का नाश होता है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अभी देव वगैरह नहीं पूजेंगे हमें, हम उसको छोड़ देते हैं आगे की बातें, क्योंकि सम्यक ज्ञान होने पर आगे वो असंख्यात गुणी निर्जरा वगैरह बातें भी कालांतर से हो जाती है। तथा शिष्य और शिष्यों के प्रति शिष्य, उनके द्वारा निरंतर पूजा का करना, वह परंपरा प्रत्यक्ष हेतु है। ये पूजा का करना है, उन्होंने उनके भी पढ़ना, जैसे शास्त्र हम लिखते हैं या कोई लिखता है, अभी आचार्य शास्त्र लिखते हैं तो उनके शिष्य तो समझते ही उसके द्वारा, और उनके तो उनके प्रति अहोभाव आएगा ही, परंतु कालांतर के बाद, जैसे कुंदकुंदाचार्य ने ग्रंथों की रचना की, और आज हम 2000 साल बाद उसको पढ़ रहे, उसके द्वारा समझ रहे, अपने आत्मा का स्वरूप समझते हैं। तो ये परंपरा, लिखा तो उन्होंने उस काल में, और हम 2000 साल के बाद भी उसको पढ़कर अपना कल्याण कर रहे हैं, ये परंपरा उसका हेतु हो गया। शास्त्राध्ययन करने से ऐसी फल की परंपरा होती है। पुनश्च परोक्ष हेतु दो प्रकार, अभ्युदय रूप और निश्रेयस रूप। अभ्युदय ने पुण्य और निश्रेयस ने मोक्ष। वहां साता वेदनियादिक प्रशस्त प्रकृतियों के तीव्र अनुभाग के उदय से, क्या कहते हैं, ये शास्त्राभ्यास आदि करने से, यहां तो पुण्य बन रहा है तो साता वेदनीय नया भी बन रहा है, और पूर्व का साता वेदनी का अनुभाग और बढ़ रहा है। सहज रूप से ये बातें होती है। ऊपर हमने क्या देखा था, अंतराय का अनुभाग कम हो रहा है, वो तो पाप प्रकृति थी। साता वेदनी आदि जो आदि लिया, पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बहुत बढ़ जाता है और उदय भी आता है। उसके कारण उत्पन्न हुआ तीर्थंकर इंद्र राजादिक का सुख, सो तो अभ्युदय रूप है। तीर्थंकर का सुख यानी वो जो केवल ज्ञानी का सुख नहीं लेना, वो तो कुछ पुण्य से नहीं उपजा है, बाह्य जो अन्य विभूतियां हैं या तीर्थंकर होने के पहले वाली जो बातें होगी वो सब इसमें ले लेना, जन्म के अतिशय आदि जो कुछ होते हैं ये सारे उनके जो अतिशय इसमें। तथा अतिशय संयुक्त आत्मजनित यानी आत्मा में से उत्पन्न हुआ अनुपम, जिसको कोई उपमा नहीं दे सकते, सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर का सुख यानी तो अनंत सुख जो केवल ज्ञानी के होता है, वह पंचेंद्रियों से अतीत सिद्ध सुख। अतीत यानी पंचेंद्रियों से पार, इंद्रियों से पार, जो इंद्रियों से नहीं भोगने में आता है परंतु आत्मा में से उत्पन्न होता है, जिसको इंद्रियातीत कहते हैं, अतीत यानी उसके पार, ऐसा जो सिद्ध सुख वह निश्रेयस रूप है। ग्रंथ अध्ययन के पश्चात परोक्ष ऐसा फल प्राप्त होता है, ग्रंथ के अध्ययन से तत्काल तो हमने ऊपर देखा अज्ञान का नाश वगैरह वगैरह होता है, और कालांतर से क्या होता है, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए यह ग्रंथ इस तरह के फलों का हेतु जानना, यानी ये ग्रंथ के अध्ययन से इतने लाभ अवश्य होते हैं। अब प्रमाण, इस शास्त्र का प्रमाण नाना प्रकार के अर्थों से अनंत है। क्या कहते हैं, एक शास्त्र कितना बड़ा है तो अर्थ उसमें कितना भरा है, तो अनंत। तथा अक्षर गणना से संख्यात है, इस शास्त्र में कितने अक्षर है तो संख्यात है, क्योंकि जीव कांड के 725 गाथा सूत्र है। ये जो मूल गाथाएं लिखी है प्राकृत में, वो 725 लिखी है यहाँ पर। नाम, जीवादि वस्तु के प्रकाशने को दीपिका समान है। जीवादि, देखो अंधेरा हो जाता है तो हम दीपक लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उसके वस्तुएं दिख जाती है। वैसे ही जीवादि वस्तु, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल आदि, ये कहेंगे जीवादि वस्तु, उसके प्रकाशने को दीपिका समान है। इसलिए संस्कृत की टीका की अपेक्षा जीव तत्व प्रदीपिका नाम है। ये संस्कृत टीका का नाम है जीव तत्व प्रदीपिका। कर्ता, इस शास्त्र के कर्ता तीन प्रकार के हैं, अर्थकर्ता, ग्रंथकर्ता और उत्तर ग्रंथकर्ता, जिसको कहते हैं मूल ग्रंथकर्ता। या मूल कौन है तो सर्वज्ञ भगवान ने बताया, फिर परंपरा से ये बातें चली आई है। तो वहां समस्त पने से दग्ध किया है घाती कर्म चतुष्टय, यानी घाती कर्मों को जिन्होंने संपूर्णतया नष्ट किया है, उससे उत्पन्न जो अनंत ज्ञानादिक चतुष्टय पना, घाती कर्मों का नाश करने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। ये कौन कौन से अनंत चतुष्टय कौन बताना चाहते हैं? हाँ बोलो, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। ये मोहिनी के नाश से अनंत सुख उत्पन्न हुआ है, उसके द्वारा जाना है त्रिकाल संबंधी अनंत ज्ञानादिक लिए ना, अनंत ज्ञानादिक प्रकट हुए हैं, उसके कारण क्या हुआ है? जाना है त्रिकाल संबंधी समस्त द्रव्य गुण पर्यायों का यथार्थ स्वरूप जिन्होंने, ये किसकी बात चल रही होगी यहाँ पर? केवली भगवान की बात, केवली भगवान की। पुनश्च नष्ट हुए है क्षुधादिक 18 दोष जिनके, यानी जिनके क्षुधादि 18 दोष नहीं है, कौन कौन से है बोलो, नलिन भाई को याद है, हाँ क्षुधा तुषा, हाँ शुद्ध पिपासा जरातंक, हाँ हाँ ये तो रत्नकरण में आया था ना श्लोक, तो ये 18 दोष उनके नहीं होते। पुनश्च 34 अतिशय, 8 प्रात्याहारियों से संयुक्त, पुनश्च समस्त सुरेंद्र नरेंद्र आदि कौन से पूजित है, सुरेंद्र ने देव देवों के इंद्र, वो सुरेंद्र कहलाते, और नरेंद्र ने मनुष्यों के इंद्र ने राजा, उनसे पूजित है चरण कमल जिनके, यानी इंद्र मनुष्य आदि सभी उनके पूजा करते हैं। पुनश्च 3 लोक के एक नाथ, पुनश्च 18 महाभाषा और 700 क्षुद्र भाषा यानी लघु भाषा, अथवा संगी संबंधी अक्षर अनक्षर भाषा उस स्वरूप, और तालवा तालवा ने पैलेट दांत पैलेट हार्ट पैलेट सब पैलेट होते ना पैलेट, तालवा दांत ओठ कंठ को हिलाना आदि व्यापार रहित। हम शब्द बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, तो क्या होता है कभी कभी जीभ है वो दांत से अट जाती है, त थ द ध न दांत से होती है, प फ ब भ म तो क्या है जीभ पर जी ओठ पर ओ भाई ऐसा होता है, ट ठ ड ढ न हार्ड सामने हार्ड पैलेट पर, क ख ग घ ङ अंदर गले में बोलते ना कंठ में, तो वहां उनकी मूवमेंट होती है और शब्द अलग अलग निकलते हैं, च छ ज झ न, ये तो ये बीच में। हाँ, तो आदि व्यापार रहित यानी इसको हिलाए बिना और भव्य जीवों को आनंद की कर्ता और युगपत सर्व जीवों के उत्तर का प्रतिपादन करने वाली, ये किसके वृद्धावली चल रही होगी? दिव्य ध्वनि की, कि कंठ ओठ आदि उसका कोई मूवमेंट हुए बिना और कैसे युगपत सर्व जीवों के उत्तर का प्रतिपादन, सभी जीवों के मन में जो कोई शंकाएं होती उसके एट अ टाइम उसी समय सबका निराकरण होता है, क्योंकि भगवान तो ओम ऐसा केवल वो ध्वनि निकलती उनकी और उसी में से सबके प्रश्नों का उत्तर आ जाता है। ऐसी जो दिव्य ध्वनि उससे संयुक्त पुनश्च 12 सभा द्वारा सेवनिक जब समोशरण लगता है तो उसमें 12 अलग अलग कोठे होते हैं, अलग अलग कंपार्टमेंट्स, एक में मुनि बैठेंगे, एक में आरिका, फिर मनुष्य वगैरह, तिर्यंच, देवों के अलग अलग कोठे, तो ये 12 सभा द्वारा, उसको सभा कहते हैं, सेवनिक यानी उनके द्वारा पूजित वंदनीय, ऐसे जो भगवान श्री वर्धमान तीर्थंकर जो परम देव वे अर्थकर्ता जानना, क्योंकि इस अभी वर्तमान में यानी अभी शुरू में वर्तमान में सांप्रत में महावीर भगवान का शासन चल रहा है, हमें जो कोई यहाँ उपलब्ध है वो आखिर के तीर्थंकर यहाँ महावीर हो गए, तो उनकी वाणी अभी चल रही है, तो उनको यहाँ अर्थकर्ता कहा, बाकी बात हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सो वाणी मस्तक नवो सदा देत होनु।